हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 28। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म अर्थात जो व्यक्ति समझता है कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य हमारी मुक्ति का कारण बनते हैं और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कार्य वही कार्य हमारे बंधन कार्य कर होते हैं। जो इस तत्व को समझता है तो वो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कि वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कार्य में नहीं फंसता। देखिए ये श्लोक बहुत सिंपल सा है और इसका अनुवाद भी हमको समझ में आ जाए, लेकिन इसको अपने जीवन में अगर अप्लाई हम करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ये समझते हुए भी, जानते हुए भी कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा हम सुखी नहीं होंगे, फिर भी जीवात्मा बार बार भोग के कार्य में लगा रहता है, सुनने के बाद और समझने के बावजूद भी, क्योंकि पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से जाती हैं। तो फिर भी इन श्लोकों को सुनना हमारे लिए आवश्यक है ताकि अपनी बुद्धि को हम स्थिर कर सकें और दृढ़ता से भक्ति के पथ में अपनी इंद्रियों को लगाए रखें। तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है, यानी कि मैं पूरी तरह से चेतन आत्मा हूं और मैं इस भौतिक शरीर में फंसा हुआ हूं, भौतिक जगत में फंसा हुआ हूं। तो इस स्थिति को एक तत्ववित व्यक्ति समझता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सचिदानंद है और उसे यह अनुभूति होती रहती है, मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। इस बात को थोड़ा विचार किया जाए कि हम लोग शरीर नहीं हैं, ये बात हम लोग अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय लेकर के समझ सकते हैं कि हम हाथ नहीं हैं, हम आँख नहीं हैं, हम कान नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात का भी अनुभव करते हैं कि हम लोग देहात्म बुद्धि में अपने को देह मानने की जो बीमारी है उससे बहुत बुरी तरह से ग्रसित हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हम समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुकाम या बुखार है तो व्यक्ति समझ रहा है कि ये इसकी स्वस्थ स्थिति नहीं है, लेकिन वो ये भी अनुभव कर रहा है कि वो बीमारी से ग्रसित है और बीमारी से केवल अपने प्रयासों से वो मुक्त नहीं हो सकता, उसे दवाई और परहेज का पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम दो चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं, एक कि निश्चित रूप से हमें शरीर नहीं है, हड्डी मांस इत्यादि का बना हुआ शरीर हम नहीं हैं, और साथ ही साथ हम ये भी अनुभव कर रहे हैं कि हम अपने प्रयासों मात्र से इस देहिक चेतना से बाहर नहीं निकल सकते, यानी हम इस बीमारी में फंसे हुए हैं। तो इसके लिए हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है, दवा और परहेज की आवश्यकता है। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए, यानी कि अगर हमारी चेतना शुद्ध है तो अपने हर कार्य को हम कृष्ण को स्वभावतः नैसर्गिक रूप से प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उनकी सेवा में समर्पित करेंगे, लेकिन देहात्म बुद्धि में होने के कारण हम ऐसा नहीं करते हैं बहुत बार। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थितिजन्य तथा अस्थायी है। अगर हमारी चेतना शुद्ध होती है हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा, भगवान की कथा को सुनने के द्वारा, भगवद गीता को पढ़ने के द्वारा, तो उसका पहला लक्षण ये होगा कि हमें कृष्ण की सेवा का उत्साह बहुत अधिक आ जाएगा, कृष्ण की सेवा का इंक्लिनेशन, सेवा करने की वृत्ति हमारे हृदय में आ जाएगी, इच्छा होगी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की। और जो भौतिक कार्य हैं जो हम भौतिक इंद्रियों से करते हैं उनके प्रति स्वभावतः अनासक्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक इंद्रियों के कार्य तभी तक हैं जब तक हम इस शरीर में हैं, और हमारा जो शरीर से संपर्क है भले ही अनादिकाल से हो लेकिन शाश्वत नहीं है, इससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववित कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। जो तत्ववित व्यक्ति है वो समझता है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज को ब्रह्म कहा जाता है, उन्हीं के अंश स्वांश परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, और वो श्री भगवान के रूप में भी हैं, जो अपने भक्तों के संग सुंदर सुंदर लीलाएं और सुंदर सुंदर आदान प्रदान करते हैं। तो इन तीनों चीजों को समझने वाला व्यक्ति तत्वविद कहलाता है, और वो समझता है कि परम साक्षात्कार है श्री भगवान का साक्षात्कार करना, और वो साक्षात्कार हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। हमको ये समझना चाहिए कि जो हमारा भौतिक बंधन है ये भी भगवान की व्यवस्था से ही है। भगवान चाहते नहीं हैं, लेकिन भगवान की माया के द्वारा है, और हम अपनी शक्ति से इस माया का पार नहीं पा सकते। हमें भगवान कृष्ण के शरणागत होने का प्रयास करना है, जो भक्ति के अनुकूल हो उसको स्वीकार करना है, नम्रता का भाव रखना है, जो भक्ति भक्ति के प्रतिकूल है उसको वर्जन करना है, उसको दूर रखना है, और उसके द्वारा भगवत कृपा से हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। ये बात हमको समझना चाहिए। तो भगवान से अपने संबंध को जानने के कारण कि हम उनके अंश हैं, उनके सेवक हैं, एक तत्ववित व्यक्ति जो है उनकी सेवा में लगता है। ऐसा नहीं है कि केवल तत्व को फिलोसॉफिकली सिद्धांत के रूप में समझ लिया और फिर हम कुछ करें नहीं। आवश्यक है कि दोनों ही रूप से, सिद्धांतिक रूप से हम समझें और साथ ही साथ भगवान की सेवा में भी हम लगें। प्रकृतेर, नेक्स्ट श्लोक को देखेंगे। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान अकृतस्न विन्विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अदम होते हैं, परंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने का क्या अर्थ है? रजगुण, तमोगुण और सत्वगुण के प्रभाव में हमारी चेतना भी उसी रंग से रंग जाती है, और उसी के अनुरूप हमें कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्य करने अच्छे लगते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि कोई तमोगुणी होता है, कोई रजगुणी होता है, कोई सत्वगुणी होता है, तो उससे प्रभावित होकर के वो व्यक्ति वैसे ही कार्य करना चाहता है, इसी को अज्ञान कहेगा, और वो भौतिक कार्य में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। तो ये उनके ज्ञान का भाव है। उनको क्या क्या ज्ञान का भाव है कि अपनी वास्तविक स्थिति कृष्ण के दास के रूप में वो नहीं समझते, और जब एक मिनट तात्पर्य में देखते हैं। पहले अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। भौतिक चेतना मतलब भोग की वासना, और भौतिक उपाधि मतलब अपने आप को शरीर मानना इत्यादि। यह शरीर प्रकृति का की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। आलसी क्यों? भले ही वो भौतिक उद्यम करने में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो बिल्कुल आलसी होता है, उसमें कोई प्रयास नहीं करता। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। इस बात को भगवान, ये एक्चुअली प्रभुपाद जी जो कोट कर रहे हैं, इसलिए भगवान का ही उद्गार है दशम स्कंद में कि देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या होता है। देहात्म बुद्धि का अर्थ है कि हम अपने आप को शरीर माने और शरीर से संबंधित व्यक्तियों को अपना माने, अपना बंधु माने, अपना मित्र माने, और अपने देश की या जो जिस भी जगह में हमने जन्म लिया है उसको ही पूज्य माने। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात है, और लोगों को लगेगा ये कैसी बात बोली जा रही है, लेकिन देश या समाज, इसकी पूजा करना ये केवल देहात्म बुद्धि के लक्षण है, और भगवान के अनुसार, ये मेरे अनुसार नहीं है, भगवान के अनुसार ऐसा व्यक्ति गोखर है, मतलब ऐसा व्यक्ति पशु के समान है। तो एक्चुअली जो व्यक्ति भगवान का भक्त जो है वो भगवान कृष्ण को अपना पूज्य मानता है, इसलिए भले ही वो देह के धरातल पे हो लेकिन एक्चुअली वो देहात्म बुद्धि से क्रमशः मुक्त होता चला जाता है, क्योंकि उसका पूज्य अलग है, उसका बंधु अलग है, उसका जो कंसेप्शन है, धारणा है, वो अलग है। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लगते। यानी कि जब आध्यात्मिकता की चर्चा होगी तो कहेंगे इससे हमारा क्या फायदा होगा, इससे देश का क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो देश सेवा, समाज सेवा में उनकी रुचि होती है लेकिन भगवत सेवा में रुचि नहीं होती है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आज से 150 साल पहले पाकिस्तान नहीं था, तो अब जो लोग अपने आप को पाकिस्तानी मान रहे हैं तो वो पाकिस्तानी 150 साल पहले अपने आप को हिंदुस्तानी मानते थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी जो चेतना है वो भौतिक आसक्तियों के कारण उन वस्तुओं से चिपकी रहती है, और लिटरली व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाएगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। ओरिजिनली बात करें या 150 साल पहले बात करें तो हम लोग सभी लोग हिंदुस्तानी थे, फिर उसके बाद हमको अपने आप कुछ लोग पाकिस्तानी मानने लगे, उसके बाद अगर और बंटवारा हो जाएगा तो फिर कुछ और मानने लग जाएंगे। तो वस्तुतः न तो हम हिंदुस्तानी हैं, न पाकिस्तानी हैं, न अमेरिकन हैं, न कुछ भी नहीं है, हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। और इतना गहरा ज्ञान है कि सुनने के बावजूद भी तुरंत समझ में नहीं आता, इसी कारण से लोग आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। यानी कि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि जो इन कार्यों में लगा हुआ है और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं रखना चाहता तो जबरदस्ती उनको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो वो परमार्थिक नहीं लेकिन परोपकारी कार्य कर रहे हैं उससे धीरे धीरे उनकी चेतना शुद्ध होगी, चाहे वो उपाधि के द्वारा ग्रसित भावना से ही क्यों ना हो, और धीरे धीरे एक दिन उनको भगवान की सेवा करने की योग्यता प्राप्त होगी। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे उन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं जो मानव के लिए परम आवश्यक है। यहाँ पे देखिए दो विचार हमारे सामने हैं कि जो लोग भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं क्या उनको हमें प्रचार करना चाहिए, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। वस्तुतः जिन लोगों की भक्ति में रुचि नहीं है या भक्ति में रुचि नहीं दिखाना चाहते उनको प्रचार करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उद्विग्न हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हें योग्य बनाया जा सकता है भगवान की भक्ति करने के लिए। जैसे कि प्रसाद खाना सबको पसंद आता है तो भगवान का नाम या कीर्तन सुन लेते हैं लोग बाग, तो कीर्तन के द्वारा या फिर भगवान का प्रसाद के द्वारा या पुस्तक वितरण के द्वारा किसी तरह से उस जीवात्मा की भक्ति की शुरुआत भक्त लोग करा सकते हैं। उनको उनके कार्यों से छेड़ने का, अलग करने का प्रयास नहीं करते, लेकिन ये बुद्धिमानी के द्वारा व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से वो थोड़ी बहुत सेवा, चाहे इनडायरेक्टली अज्ञान में ही करे, करने का प्रयास करवाते हैं। तो अब यहाँ पे अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो अर्जुन से भगवान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अर्जुन तत्ववित हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनसे किस प्रकार का कार्य करने के लिए और कैसे कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः
अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो।
एक इंटरेस्टिंग चीज है, विगत ज्वर, ज्वर मतलब बुखार होता है। तो मैं सोचता था कि ज्वर शब्द का क्या मतलब है, ज्वर का आलस्य से क्या संबंध है। तो आप देखेंगे जब व्यक्ति को बुखार होता है तो उसे कुछ कार्य करने का मन नहीं करता। ऐसे ही भौतिक बुखार में जब हम देखते हैं कि मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं है तो व्यक्ति कार्य करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए उद्यत नहीं रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि अपने लाभ की आकांक्षा को छोड़ो, जिसकी वजह से तुमको, जिस बुखार की वजह से आप कार्य इस युद्ध को नहीं करना चाहते हो, या कि स्वामित्व का दावा, यानी कि इससे मेरा क्या लाभ तो होगा, इससे मेरा क्या लाभ होगा, अगर ये होगा तो उससे क्या होगा, ये युद्ध का परिणाम क्या आएगा, इस परिणाम क्या, ये परिणाम क्या मेरे अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, इस बात को किनारे रख करके ये भावना से युक्त होकर कि मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, संन्यास अध्यात्म चेतसा। अध्यात्मिक चेतना क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, ये मेरा कर्तव्य है। न तो मैं स्वामी हूँ और न तो मैं इस जगत में मेरा कुछ लाभ होने वाला है या ना लाभ मिलने वाला है, ना मेरी कोई हानि होने वाली। ये बात भी अगर हम समझ लें तो हम अपने कर्तव्यों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अपने कार्यों को समर्पित करें। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि संन्यास लेने का के लिए किसी को लाल कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, संन्यास व्यक्ति तुरंत ले सकता है। न्यास मतलब स्थिति और सम्यक मतलब बिल्कुल ठीक प्रकार से। तो अगर हम ठीक प्रकार से स्थित होते हैं अपनी स्थिति में जो कि है कृष्ण के दास की, तो व्यक्ति संन्यास आश्रम में स्थित है, भले ही वो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या संन्यास। तो इस प्रकार से अपनी चेतना को इस तरह से स्थित करके ज्ञान के द्वारा कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय ले ले और लाभ और हानि की अपेक्षा छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगे। यहाँ पे अर्जुन के लिए भक्ति है या कार्य है, सेवा है युद्ध करना। तात्पर्य, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। थोड़ा समझना चाहिए इस बात को। सैन्य अनुशासन में व्यक्ति को कार्य करना ही पड़ता है, जो भी उसके ऊपर आज्ञा होती है उसको, उस पर वो नहीं सोच सकता कि आज उसे करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, अनुशासन का मतलब है जैसा बताया गया है वैसे उसे करना ही है, उसमें अपने मन की कोई बात नहीं है। ऐसे ही जो साधना भक्ति है, साधना के नियम है, वो हमें करने ही होते हैं, उसे पालन करना ही है यदि हम कृष्ण भावना में प्रगति चाहते हैं। तो कठिनाई क्या उपस्थित हो सकती है? कठिनाई उपस्थित होती है राग और द्वेष की। जो इंद्रियों को अच्छे लगते हैं कार्य, अगर वो कृष्ण भावना के अनुकूल नहीं हो तो इंद्रियां उसको फिर भी करना चाहती हैं, लेकिन हमें उसे नहीं करना है। और जो इंद्रियों को प्रतिकूल लगता है और कृष्ण की भावना के अनुकूल हो, फिर भी उन्हें करना है, भले ही इंद्रियां उनको ना करना चाहें। तो इस प्रकार की कठिनाई हो सकती है, जैसे कि अर्जुन को दुख लग रहा था कि कैसे मेरे स्वजन मारे जाएंगे तो उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं सुखी कैसे रहूंगा। ये सब इंद्रिय तृप्ति की भावना के ऊपर आधारित रहता है। तो इसको त्याग करके भगवान कह रहे हैं कठिनाई का अनुभव होगा, लेकिन आप त्यागें इस बात को और कृष्ण के अनुसार कार्य करने का प्रयास करें। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। बहुत सुंदर बात है कि जितना हम भगवान से अलग भोग करने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारे दुख बढ़ते जाएंगे। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। अनादिकाल से जीव कृष्ण के बहिर्मुख है, कृष्ण से बहिर्मुख है, उनको भूलने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए माया उसको अधिक से अधिक दुख दे रही। तो जितना हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण की सेवा में नियोजित रहेंगे, उतना माया के द्वारा दुखों से हम दूर रह पाएंगे। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है, यानी कि जिन कार्यों को कर रहा है ये समझते हुए कि ये इंद्रिय और शरीर भगवान का है, इसका फल भगवान को जाना चाहिए, इस भावना से करे, न कि इस भावना से कि मुझे कितना लाभ प्राप्त होगा। अर्जुन को भगवान के आदेश का पालन मात्र करना था, परमेश्वर यानी कि ये नहीं सोचना, उसको जीतने का प्रयास नहीं करना है, उसे केवल युद्ध करना है भगवान की इच्छा समझते हुए।
परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णता परमेश्वर पर आश्रित रहता है, ये दूसरे शब्दों में जो पूर्णता कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। भगवान पर आश्रित रहने का अर्थ यही है कि मुझे कृष्ण को ही प्रसन्न करना है और कृष्ण की कृपा से ही सारे कार्य सिद्धि प्राप्त करेंगे। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न रखना, अपने लिए कुछ भी जोड़ने का प्रयास नहीं करना अलग से। और इस चीज को नेक्स्ट वाले लाइन में बहुत अच्छा प्रभुपाद समझा रहे हैं। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु उनमें से वे अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी तरह मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। और जितना हम इस बात को समझते हैं और जितना अपनी इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उतना ही हम सुख शांति का अनुभव करेंगे। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्ममा अर्थात मेरा कुछ नहीं कहलाती है। यानी मेरा कुछ नहीं है तो कुछ कर्मी लोग कहेंगे, ठीक है हमको दे दीजिए फिर, आपका नहीं है। हाँ हमारा नहीं है, लेकिन है भगवान का, और हमारे केयर में, भगवान के अरेंजमेंट से हमारे केयर में, हमारे संरक्षण में है, और इसलिए हम इसको संरक्षित करते हैं क्योंकि भगवान की सेवा के लिए नियोजित किया जा रहा है। अगर हम कर्मी लोगों को सारी वस्तुएं दे देंगे, जो वो वस्तुएं जो हमारे संरक्षण में हैं, तो उसका उपयोग भोग के लिए करेंगे, तो ऐसा भक्त लोग नहीं करते हैं। वो ये नहीं समझते कि वस्तुएं उनकी हैं, लेकिन वस्तुएं भगवान की हैं, इसलिए भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है, इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यानी व्यक्ति अपने गुण और प्रकृति के अनुसार कार्य करे, वो स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, जो भी है, वृद्ध भी है, जो भी उसे कार्य करने अच्छे लगते हैं या उसकी जो स्वभाव है कार्य करना, ऑब्वियसली वो मांस काटने जैसा चीज़ नहीं होना चाहिए, शराब बेचने जैसी चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन जो सामान्य रूप से जो हम कार्य करते हैं, जो हम समझते हैं इसमें अधर्म नहीं हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति कार्य अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, उनको भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करे, और साथ साथ भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे। कलयुग में केवल कर्मयोग से ही काम नहीं चलेगा, भगवान का श्रवण कीर्तन करना परम आवश्यक है, नहीं तो कुछ समय के बाद फिर वही भावना से हम ग्रसित हो ही जाएंगे, या रहते ही है वैसे, कि हम शरीर हैं, शरीर संबंधित वस्तुएं हमारी हैं, इसका भोग मैं करूंगा, और फिर हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो अगर ऐसे व्यक्ति करेगा तो क्या होगा, भगवान बता रहे हैं 31वें श्लोक में। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते भी कर्मभि। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों को पूर्णता पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर परपट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भगवान से ईर्ष्या रहित होने का अर्थ क्या है। ईर्ष्या रहित होने का अर्थ ये है कि जैसा भगवान बोल रहे हैं उसको हम एज इट इज स्वीकार कर लें और भगवान की सेवा में लगें। ये ना बोले अरे ये कृष्ण तो एक सामान्य व्यक्ति है, इसकी बात का अर्थ तो ये है, उसकी बात का अर्थ तो वो है। इस भावना से रहित होकर के केवल जैसा भगवान बोल रहे हैं कि मुझको अपने कर्म समर्पित करो, तुरंत कर्म अगर समर्पित करना शुरू कर दें तो हम कर्म बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। और लास्ट लाइन प्रभुपाद की बड़ी सुंदर है, और वो कह रहे हैं कि व्यक्ति मान लीजिए भक्ति के सारे नियमों को शुरुआत में पालन ना भी कर पाए,
लेकिन कम से कम उसका विद्रोह भावना नहीं है कि मुझे करना ही नहीं है। आज मैं पढ़ रहा था कि नामापराध के बारे में, कम से कम हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि मैं शुद्ध नाम जप कर सकूं। तो भगवत कृपा से हम एक दिन भगवान की कृपा से शुद्ध नाम जप कर पाएंगे। अपराधों से बचने का प्रयास करें, हम अपराध तो होते ही हैं, लेकिन अपराध से बचने का प्रयास करें और ये हृदय में इच्छा हो कि एक दिन मैं भगवान का नाम शुद्ध रूप से जप कर पाऊंगा, तो भगवत कृपा से हम उस स्थिति को पहुँच सकेंगे। इसी बात को यहाँ पे दूसरी तरह से बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भले ही हम भक्ति के जो स्तर है उससे बहुत नीचे हों, पूरी तरह से उसको पालन ना भी कर पाएं, लेकिन अगर इच्छा है पालन करने की तो भगवत कृपा से एक दिन उसको हम पालन कर पाएंगे। तो आगे हम चर्चा करेंगे या एक पढ़ ही लेते हैं। टेक्स्ट 32, ये त्वेतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यानी कि ज्ञान होने, सो कॉल्ड ज्ञानी होने के बाद भी अगर भगवान में से ईर्ष्या है, भगवान को समर्पित नहीं है व्यक्ति, तो उसका जो मुक्ति का प्रयास है वो नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। यानी कि अगर अपने संबंध को भगवान कृष्ण से नहीं समझा, तो व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी उत्कृष्ट व्यक्ति हो, लेकिन वो व्यक्ति गिर जाता है। आरुह्य कृच्छे न परम पदम ततः पतन्ति नादत युष्मात् पदांग्रह। इस बात को श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि व्यक्ति परम पद को प्राप्ति कर ले, मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर ले, लेकिन अगर भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता है, भगवान की भक्ति भक्त नहीं है, तो अंततोगत वापस इस जगत में आ जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति का सुख उसको प्राप्त नहीं है। और जीवात्मा सुख की तलाश में है ही, और जब सुख उसको आध्यात्मिक जीवन में नहीं मिलता तो वापस वो भौतिक जगत में गिर जाता है। ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे। हरे कृष्ण।